एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। सभी सुनने वालों का इस ज्ञान गोष्ठी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो ऊपरी तौर पर तो लिखने की कला के बारे में है, लेकिन असल में ये किसी भी हुनर को साधने, जिंदगी में अपना मकसद या कहें अपनी भूमिका, रोल खोजने और उस लक्ष्य तक पहुंचने की लगन के बारे में है।
बिल्कुल, और ये किताब है स्टीवन किंग की मशहूर ऑन राइटिंग, अ मेमोर ऑफ द क्राफ्ट। स्टीवन किंग, जिन्हें लोग हॉरर का बादशाह भी कहते हैं, किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं। लेकिन इस किताब में वो डरावनी कहानियों से ज्यादा जिंदगी, मेहनत और अपने काम के प्रति ईमानदारी की बात करते हैं।
सही कहा, और ये किताब आज भी इसलिए इतनी जरूरी है क्योंकि ये रचनात्मकता के आसपास जो एक रहस्य का पर्दा बना रहता है ना, उसको हटाती है। किंग किसी ऊंचे आसन पर बैठे गुरु की तरह नहीं बोलते,
नहीं बिल्कुल नहीं,
बल्कि एक अनुभवी कारीगर की तरह बात करते हैं जो अपने औजार जानता है और रोजाना काम पर लगता है। वो दिखाते हैं कि लेखक या कोई भी कलाकार बनना सिर्फ प्रतिभा का खेल नहीं है, बल्कि ये एक भूमिका है जिसे आप चुनते हैं और अनुशासन के जरिए निभाते हैं।
स्टीवन किंग के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है ये समझने के लिए कि उनकी बातों में इतनी सच्चाई और वजन क्यों है। मतलब 60 से ज्यादा उपन्यास, अनगिनत कहानियां, करोड़ों किताबें बिक चुकी हैं।
हाँ, आंकड़े तो जबरदस्त हैं।
कैरी, द शाइनिंग, इट जैसी कितनी ही रचनाएं, लेकिन उनकी असली योग्यता सिर्फ ये आंकड़े नहीं है, जैसा आपने कहा।
हाँ, किंग एक साधारण मतलब मजदूर वर्ग की पृष्ठभूमि से आते हैं। उन्होंने लेखन को हमेशा एक नौकरी, एक शिल्प की तरह देखा। कोई फैंसी डिग्री या कनेक्शन नहीं थे उनके पास।
सही,
उन्होंने सीखा है पढ़कर, लिखकर और अनगिनत बार नामंजूर होकर। वो एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाते हैं, याद है कैसे वो शुरुआती रिजेक्शन स्लिप्स को दीवार पर एक कील पर टांगते जाते थे?
हाँ, और जब कील बोझ से झुक गई तो उन्होंने दीवार में एक मोटी खूंटी ठोक दी।
हाँ बिल्कुल, ये उनकी जिद दिखाता है और अपने चुने हुए रास्ते पर टिके रहने का एक सबूत है।
और उनकी जिंदगी आसान नहीं रही है, गरीबी, फिर नशे की लत से भयानक संघर्ष, और फिर वो जानलेवा सड़क दुर्घटना जिससे वो बाल बाल बचे। इन सब अनुभवों ने उन्हें सिखाया कि अनुशासन क्या होता है, टिके रहना किसे कहते हैं, और कैसे आपका काम, आपका शिल्प सचमुच आपकी जान बचा सकता है, आपको जीने का एक लक्ष्य दे सकता है। वो इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि लेखक या कलाकार गढ़े जाते हैं, सिर्फ पैदा नहीं होते।
तो ये किताब ऑन राइटिंग आखिर है क्या? जैसा नाम से जाहिर है, ये दो चीजों का मिश्रण है। एक हिस्सा है उनकी जिंदगी की कहानी, बहुत निजी और कहूं तो चौंकाने वाली हद तक ईमानदार,
बहुत ईमानदार।
और दूसरा हिस्सा है लेखन के शिल्प पर सीधी सरल व्यवहारिक सलाह। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, बस वो नुस्खे जो उनके लिए काम आए।
बिल्कुल, इसका मकसद ही यही है कि लेखन को रहस्यमयी कला के बजाय एक सीखा जा सकने वाला हुनर बताया जाए। किंग कहते हैं ये एक तरह की कारीगरी है जिसके अपने औजार हैं, तकनीकें हैं, जिन्हें कोई भी मेहनत करने वाला सीख सकता है।
हाँ,
ये किताब मुख्य रूप से लिखने वालों के लिए है, लेकिन सच कहूं तो रचनात्मकता, अनुशासन और मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत, इन सब में दिलचस्पी रखने वाले किसी भी इंसान को इसमें कुछ न कुछ जरूर मिलेगा।
किताब की बनावट भी दिलचस्प है। पहला हिस्सा, जिसे वो सीवी कहते हैं, करिकुलम विटाई,
जीवन वृत्तांत,
हाँ, उनके शुरुआती जीवन, संघर्षों और उन अनुभवों के बारे में है जिन्होंने उन्हें लेखक बनाया।
ये दिखाता है कि कैसे जिंदगी के उतार चढ़ाव ही आपकी कहानियों का कच्चा माल बनते हैं और आपकी भूमिका को आकार देते हैं।
फिर आते हैं व्यवहारिक हिस्से, टूल बॉक्स और ऑन राइटिंग। यहाँ वो लेखन के औजारों, शब्द, व्याकरण, शैली, इन पर बात करते हैं और अपनी निजी लेखन प्रक्रिया के बारे में भी बताते हैं।
उनका सबसे अनोखा विचार शायद यही आता है कि कहानी को प्लान नहीं किया जाता, उसे उसे खोदा जाता है।
हाँ, उस पे आएंगे। और अंत में ऑन लिविंग, ए पोस्ट स्क्रिप्ट, जहाँ वो उस भयानक दुर्घटना और उसके बाद लेखन ने कैसे उन्हें जीने का मकसद दिया, इस पर बात करते हैं।
चलो इन हिस्सों पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। सीवी सेक्शन, ये सिर्फ जीवनी नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उन शुरुआती सबकों का जिक्र है जिनसे उनका लेखक वाला रोल तय हुआ, जैसे बचपन में पढ़ने का शौक, माँ का साथ और पिता की छोड़ी हुई वो पुरानी हॉरर किताबें मिलना।
हाँ, और फिर वो रिजेक्शन वाला किस्सा जो सिखाता है कि टिके रहना कितना जरूरी है।
और उनकी पत्नी टैबिथा का जिक्र बहुत अहम है। किंग ने उन्हें अपना आदर्श पाठक कहते हैं,
आइडियल रीडर।
हाँ, वो पहली इंसान जो उनकी हर रचना पढ़ती हैं और बेबाक राय देती हैं।
ये दिखाता है कि भरोसेमंद फीडबैक कितना जरूरी है ना?
बिल्कुल। और फिर कैरी उपन्यास की कहानी, किंग ने शुरुआती पन्ने कूड़ेदान में फेंक दिए थे।
सही साथ और प्रोत्साहन किसी के लक्ष्य तक पहुंचने में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है।
इसी हिस्से में वो नशे की लत पर भी खुलकर बात करते हैं। ये दिखाता है कि सफलता के अपने खतरे हैं और कैसे जिंदगी की मुश्किलें आपकी कला को प्रभावित करती हैं। लेकिन इससे उभरना भी उनकी कहानी का हिस्सा है, जो दृढ़ता और मदद मांगने की हिम्मत दिखाता है।
हाँ, और ये सब अनुभव उनके लेखन को वो गहराई देते हैं।
बिल्कुल।
इसके बाद एक छोटा पर बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, व्हाट राइटिंग इज, लेखन क्या है। यहां किंग कहते हैं लेखन असल में टेलीपैथी
है ना दिलचस्प विचार?
बहुत, मतलब लेखक का काम है अपने दिमाग की तस्वीर, अपनी सोच, अपनी कहानी को पाठक के दिमाग में हूबहू उतार देना, बिना किसी शोर या धुंधलेपन के।
सही।
भाषा, शैली, व्याकरण, ये सब इसी टेलीपैथी को साधने के औजार हैं। यही लेखन का परम लक्ष्य है, विचारों का स्पष्ट और सीधा प्रसारण।
बिल्कुल। और इन्हीं औजारों की बात होती है अगले सेक्शन टूल बॉक्स में। किंग इसे एक कारीगर के बक्से की तरह देखते हैं। सबसे ऊपर सबसे जरूरी औजार शब्दावली और व्याकरण। शब्दावली पर उनकी सलाह है, सरल रहो। पहला सही शब्द जो दिमाग में आए उसे इस्तेमाल करो। बड़े बड़े भारी भरपर शब्दों से पाठक को डराने की कोशिश मत करो।
हाँ, दिखावा नहीं।
बिल्कुल। और व्याकरण जरूरी है, लेकिन नियमों को रटने से ज्यादा उनकी समझ अहम है।
और यहीं वो अपनी मशहूर लड़ाई छेड़ते हैं पैसिव वॉइस के खिलाफ, कर्मवाचक।
हाँ, वो कहते हैं गिलास टूट गया लिखने के बजाय लिखो मैंने गिलास तोड़ दिया, अगर सच है तो।
क्यों?
क्योंकि कर्मवाच्य अक्सर जिम्मेदारी से बचता हुआ कमजोर और अस्पष्ट सा लगता है। एक्टिव वॉइस कर्तृवाच्य
सीधा, साफ और ज्यादा असरदार।
हाँ, ज्यादा असरदार होता है। ये पाठक तक आपकी बात बिना घुमाए पहुंचाता है। टूल बॉक्स में आगे है शैली, स्टाइल, और यहीं आती है उनकी वो लाइन जो बहुत मशहूर हुई, नरक का रास्ता क्रिया विशेषणों से पटा है, एडवर्ब्स।
हाँ हाँ हाँ।
उनका मतलब ये नहीं कि एडवर्ब्स इस्तेमाल ही ना करें, लेकिन वो कहते हैं कि धीरे से कहा, गुस्से से चिल्लाया, जैसे एडवर्ब्स अक्सर कमजोर क्रिया वर्ब की निशानी होते हैं।
अच्छा।
बेहतर है एक मजबूत क्रिया चुनो, जैसे फुसफुसाया या गर्जा, जो खुद ही तरीका बता दे। इससे भाषा ज्यादा कसी हुई और असरदार बनती है। आलसी भाषा से बचो।
ये दिलचस्प है। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि वो भाषा को कितनी गंभीरता से लेते हैं, सिर्फ कहानी ही नहीं, कहानी कहने के तरीके को भी। उनका जोर हमेशा सरलता और स्पष्टता पर रहता है। ऐसी भाषा जो पाठक को कहानी में खींच ले, उसे शब्दों के जाल में न उलझाए।
अब आते हैं सबसे ज्यादा व्यावहारिक हिस्से पर, ऑन राइटिंग। यहाँ किंग अपनी रोजमर्रा की लेखन प्रक्रिया बताते हैं। एक शांत कमरा, बंद दरवाजा, ताकि कोई ध्यान न भटकाए,
फोकस के लिए। हाँ,
और सबसे जरूरी रोज लिखने का नियम। उनका अपना लक्ष्य है रोज 2000 शब्द लिखना, चाहे मन हो या ना हो। वो कहते हैं प्रेरणा का इंतजार मत करो, वो तो आलसी परी है।
सही।
काम शुरू करो, अनुशासन दिखाओ, प्रेरणा अपने आप आ जाएगी। ये किसी भी लक्ष्य को पाने का मूल मंत्र है ना?
बिल्कुल है। और यही वो अपना वो अनोखा विचार रखते हैं, कहानी एक जीवाश्म फॉसिल की तरह है।
हाँ।
ज्यादातर लेखक कहानी का पूरा प्लॉट पहले से सोचकर चलते हैं, लेकिन किंग कहते हैं नहीं, कहानी जमीन में दबे किसी डायनासोर के कंकाल की तरह पहले से मौजूद है। लेखक का काम उसे बनाना नहीं, बल्कि अपने औजारों से सावधानी से खोद कर निकालना है, परत दर परत, बिना उसे तोड़े। ये आविष्कार नहीं, खोज की प्रक्रिया है।
इसका मतलब ये हुआ कि आप कहानी पर जबरदस्ती नहीं करते, उसे खुद सामने आने देते हैं। आप एक स्थिति, सिचुएशन से शुरू करते हैं, क्या हो अगर,
व्हाट इफ,
फिर उसमें जीते जागते किरदार डालते हैं और देखते हैं कि वो क्या करते हैं। कहानी वहीं से पनपती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये किरदारों को ज्यादा आजादी देता है।
और फिर आता है लिखने और सुधारने का चक्र। पहला ड्राफ्ट, दरवाजा बंद,
बस लिख डालो अपने लिए, तेजी से, बिना रुके, बिना किसी की राय की परवाह किए, कहानी को बाहर आने दो।
फिर आराम। ड्राफ्ट पूरा होने के बाद उसे कम से कम 6 हफ्ते के लिए भूल जाओ, कहीं रख दो।
नजरिए के लिए दूरी जरूरी है।
हाँ बिल्कुल, ताकि आप बाद में उसे नई नजर से देख सको। फिर दूसरा ड्राफ्ट, दरवाजा खुला।
अब उसे पढ़ो, व्याकरण ठीक करो, भाषा सुधारो, और सबसे अहम, कहानी की कमजोरियां पहचानो। अपने आदर्श पाठक से राय लो।
और यहीं आती है वो बेरहम सलाह, अपने प्यारों को मार डालो, किल योर डार्लिंग्स।
हाँ,
मतलब वो सुंदर वाक्य, वो प्यारे सीन, वो दिलचस्प किरदार जो कहानी को आगे नहीं बढ़ाते, उन्हें काट दो, चाहे कितना भी दुख हो, कहानी सबसे ऊपर है।
लक्ष्य, पहला ड्राफ्ट -10%।
बिल्कुल,
ये किल योर डार्लिंग्स वाली बात सिर्फ लिखने पर ही नहीं, शायद जिंदगी के कई फैसलों पर लागू होती है। जो चीजें अच्छी लगती हैं पर हमारे असल लक्ष्य के लिए जरूरी नहीं, उन्हें छोड़ना पड़ता है।
सही कहा। और अंत में आता है सेक्शन ऑन लिविंग अ पोस्ट स्क्रिप्ट। यहाँ किंग उस भयानक एक्सीडेंट के बारे में लिखते हैं जिसने उन्हें लगभग मार ही डाला था।
ये पढ़ना बहुत बहुत मार्मिक है।
असहनीय दर्द, महीनों का इलाज।
हाँ,
लेकिन इस अंधेरे में लेखन उनके लिए एक सहारा बना। वो कहते हैं कि लिखना, वो शिल्प जिसे उन्होंने सालों से साधा था, अब उनके लिए सिर्फ काम नहीं रहा। वो टूटे शरीर और बिखरे दिमाग को जोड़ने का, उस बेमतलब की घटना में मतलब ढूंढने का और सचमुच जीने का एक जरिया बन गया। ये दिखाता है कि कैसे आपका काम, आपका जुनून, आपकी भूमिका आपको सबसे मुश्किल वक्त में भी एक लक्ष्य और जीने की वजह दे सकता है।
तो इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें क्या निकलती हैं? पहली तो यही कि लेखन या कोई भी हुनर कोई जादू नहीं है, एक शिल्प है।
क्राफ्ट।
हाँ, क्राफ्ट। इसे सीखने के लिए कारीगर वाला नजरिया चाहिए। औजार सीखो, मेहनत करो, रोज काम पर लगो।
दूसरी और शायद सबसे सीधी सलाह, खूब पढ़ो, खूब लिखो। पढ़ने से सीखते हो, लिखने से अभ्यास होता है। कोई शॉर्टकट है ही नहीं।
नहीं है, जैसे संगीत का रियाज करता है खिलाड़ी प्रैक्टिस,
बिल्कुल वैसे ही लेखक को पढ़ना लिखना है।
तीसरा, अनुशासन प्रेरणा से ज्यादा भरोसेमंद है। रोज नियम से काम करना रचनात्मकता को जगाता है, उसका इंतजार नहीं करता। ये बात जिंदगी के हर पहलू पर लागू होती है, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो या कोई शौक।
एकदम सही। चौथा, ईमानदारी और स्पष्टता। अपनी आवाज में लिखो, बनावटीपन से बचो, सरल सीधी भाषा का इस्तेमाल करो ताकि पाठक सीधे कहानी से जुड़ सके।
वही टेलीपैथी वाली बात।
हाँ, और पांचवा, कहानी को खोजो, उस पर जबरदस्ती मत करो, किरदारों को सांस लेने दो। और हाँ, बेरहमी से काटना छाटना सीखो, किल योर डार्लिंग्स। इस किताब में कुछ पंक्तियां हैं जो बार बार याद आती हैं, जैसे वो सीधी सी बात, यदि आप लेखक बनना चाहते हैं, खूब पढ़ें और खूब लिखें। ये तो मतलब नींव है।
बिल्कुल, और वो अपने प्यारों को मार डालो, ये सिखाता है कि अपने काम को लेकर निर्मम होना कितना जरूरी है, कहानी को खुद से ऊपर रखना।
और एक जो मुझे बहुत गहरे तक छूती है, खासकर दुर्घटना वाले हिस्से के बाद, लेखन जीवन नहीं है लेकिन जीवन में वापस आने का एक तरीका हो सकता है। ये कला की ताकत दिखाता है, कैसे वो हमें मुश्किलों से उभार सकती है, हमें दोबारा खड़ा कर सकती है। ये काम को सिर्फ रोजी रोटी नहीं बल्कि जीने का सहारा बना देता है।
इन विचारों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं लेखन के अलावा?
कई तरीकों से। अनुशासन और रोज नियम से काम करने का सिद्धांत, ये तो हर चीज पर लागू होता है। कोई नई भाषा सीखना हो, परीक्षा की तैयारी करनी हो, सेहत बनानी हो या कोई नया हुनर सीखना हो।
हाँ, कुछ भी।
हाँ, रोज थोड़ा थोड़ा करना ही कामयाबी की कुंजी है।
और संचान भी स्पष्टता। किंग की सलाह, सरल शब्द, सीधी बात, एक्टिव वॉइस, ये दफ्तर में ईमेल लिखने, मीटिंग में बोलने या अपनी बात किसी को समझाने में बहुत काम आ सकती है।
बिल्कुल। क्या हम अपनी बात सामने वाले के दिमाग तक बिना उलझाए पहुंचा पा रहे हैं? ये सवाल हमेशा पूछना चाहिए।
सही।
और वो दूसरा ड्राफ्ट इज इक्वल टू पहला ड्राफ्ट +10% वाला आइडिया, ये किसी भी काम को बेहतर बनाने का तरीका है। पहली कोशिश कभी परफेक्ट नहीं होती।
कभी नहीं।
चाहे आप कोई रिपोर्ट बना रहे हों, कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हों या घर का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हों, उसे दोबारा देखना, काट छाट करना, सुधारना हमेशा जरूरी है।
और किंग की कहानी से सबसे बड़ी सीख शायद है मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत। रिजेक्शन, नशा, दुर्घटना, उन्होंने हार नहीं मानी। अपने काम पर फोकस बनाए रखना, अपने शिल्प में लगे रहना, ये हमें मुश्किल दौर से निकलने में मदद कर सकता है।
हाँ, अपने जुनून को अपना सहारा बनाना। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि इस किताब से सबसे यादगार बात क्या रही, तो शायद वो ये नज़रिया है कि रचनात्मकता कोई दैवीय वरदान नहीं बल्कि मेहनत और अनुशासन का फल है। ये बात बहुत हिम्मत देती है, मतलब किसी को भी।
मेरे लिए शायद ये कि जीवन के अनुभव अच्छे या बुरे बेकार नहीं जाते, वो हमारी कला, हमारे काम को गहराई देते हैं। और हाँ, वो टेलीपैथी वाला विचार
कि शब्दों के जरिए हम सचमुच एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक पुल बना सकते हैं। ये लेखक या किसी भी कम्युनिकेटर की भूमिका और उसके लक्ष्य को कितनी खूबसूरती से बताता है।
तो सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, आपके अपने अनुभवों की जमीन में कौन सी ऐसी जीवाश्म कहानी या कौन सा ऐसा हुनर दबा पड़ा है जिसे आप थोड़ी मेहनत और अनुशासन से खोदकर बाहर निकालना चाहेंगे? वो कौन सा शिल्प है जो आपकी जिंदगी में एक नई भूमिका या एक नया लक्ष्य जोड़ सकता है?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया का आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।